महाबंध पुस्तक चौथी लेक्चर नंबर 2। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयरियानं, नमो वर्चायानं, नमो लोए सौवसाहूं भूतबलि प्रणीतं तं बंधतत्वप्रकाशकं महाधवल विख्यातं महाबंधं नमाम्यहम्। यह श्री भगवान भूतबलि भट्टारक प्रणीत महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जिसका दूसरा नाम है महाधवल। उसमें चौथी पुस्तक में तीसरा अनुभाग बंध अधिकार चल रहा है और अभी हम आए हैं पृष्ठ संख्या 4 पर। यहाँ भी जो प्ररूपना दूसरी तीसरी है, सर्वबंध और नौ सर्वबंध प्ररूपना, कुल 24 प्ररूपनाएं इन्होंने ही नंबर दे दिए हैं 24 अनुयोग द्वारा। पहली संज्ञा प्ररूपना, उसमें घाती संज्ञा और स्थान संज्ञा की बात हमने देखी। अब सर्वबंध और नौ सर्वबंध प्ररूपना है, जो सर्वबंध और नौ सर्वबंध है उसका यह निर्देश है ओघ और आदेश। ओघ से ज्ञानावरण कर्म का अनुभाग बंध क्या सर्वबंध होता है या नौ सर्वबंध होता है? तो कहते सर्वबंध भी होता है और नौ सर्वबंध भी होता है, यानी किसमें क्या क्या पाया जाता है वो पूछ रहे हैं। सब अनुभाग का बंध होता है इसलिए सर्वबंध होता है, और उससे न्यून अनुभाग का बंध होता है इसलिए नौ सर्वबंध होता है। इसी प्रकार सातों कर्मों के विषय में जानना चाहिए, इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। प्रत्येक मार्गणा के लिए उसके लिए जो उत्कृष्ट है वो भी बंध होगा, अनुत्कृष्ट जो जिसको हम नौ सर्व कहेंगे हम। अब यहाँ उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट की अपेक्षा बताएंगे, 4 और 5 नंबर उत्कृष्ट बंध और अनुत्कृष्ट बंध प्ररूपणा।
हाँ
यानी जहाँ
सब
जितनी वैरायटी उसका अर्थ क्या है? जैसे हमने देखा ना स्थित मैक्सिमम स्थिति बंधी, तो उसके नीचे के सभी स्थितियां बंधी। ऐसे जितना मैक्सिमम अनुभव बंधा तो मैक्सिमम अनुभव कब कहेगा? जघन्य से लेकर वहां तक के सभी बंधेंगे तभी कहलाएगा। जब हम कहेंगे उत्कृष्ट बंध हुआ, उत्कृष्ट बंध की प्ररूपना अलग से बता रहे, परंतु उत्कृष्ट अनुभव किसमें होगा? अंतिम स्पर्धक में होगा, जहाँ इतना उत्कृष्ट अनुभाग बंद हुआ है। कुछ परमाणु में जघन्य यानी पहले स्पर्धक जैसे है, कुछ परमाणु दूसरे स्पर्धक जैसे है, कुछ परमाणु तीसरे स्पर्धक जैसे है। यानी मान लेते हैं 100 स्पर्धक बांधे, 100वां उत्कृष्ट है, तो उसके लिए 1 से लेकर 100 तक के सभी बंधे हैं उस समय, उसको कहेंगे सर्वबंध। यानी जितने उत्कृष्ट बंध नहीं किया, मान लेते 80 वाला ही बंध किया अनुभाग बंध, तो उस समय उसने 1 से लेकर 80 तक बांधे, वो सर्व नहीं बांधे इसलिए नौ सर्व बांधे, उसी को उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट कहेंगे। जो उत्कृष्ट बंध अनुत्कृष्ट बंध है उसका यह निर्देश है ओवर आदेश। ऊपर जो आदेश लिखा था ना वहां फुल स्टॉप नहीं दिया था, ऊपर के पैराग्राफ जगह छुट्टी है फुल स्टॉप के लिए। अब यहाँ नीचे पढ़ रहे हैं उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट। ओघ से ज्ञानावरण कर्म का अनुभाग बंध क्या उत्कृष्ट बंध होता है या अनुत्कृष्ट बंध होता है? तो सर्वोत्कृष्ट अनुभाग को बांधता है इसलिए उत्कृष्ट बंध होता है, वो लो कैसा हुआ, और उससे न्यून अनुभाग को बांधता है इसलिए अनुत्कृष्ट बंध होता है।
या
अनुभाग अभी आया है, यहाँ स्थिति की बात पूछनी नहीं, अनुभाग कितना बांध रहा है उत्कृष्ट, जैसे हम कहें उत्कृष्ट स्थिति बंधक कितना है ज्ञानवान का 30 कोड़ा कोड़ी सा, तो वैसे उत्कृष्ट अनुभाग जो उसका होगा, उसका जब बंद होता है तो हम कहेंगे उत्कृष्ट बंद होता है, और इतना उत्कृष्ट नहीं बन रहा है, विशुद्धि में बन रहा है, तो हम कहेंगे अनुत्कृष्ट बंध। फर्क इसलिए कि सर्वबंध में जगन्य से लेकर उत्कृष्ट के सभी स्पर्धक बंध, इसलिए सर्व का जो सर्वबंध है वही पर उत्कृष्ट बंध भी है, थोड़ा डिफरेंस है वो है ही। उत्कृष्ट बंध, उत्कृष्ट बंध हम केवल उस समय का मैक्सिमम बंध कितना है उसको बताते हैं, और सर्व में जब जहाँ उत्कृष्ट बंध हुआ है वहाँ जगन्य से लेकर उत्कृष्ट तक, क्योंकि डायरेक्ट उत्कृष्ट ही बनता नहीं है, जैसे स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी बंधी तो आबादा के ऊपर के प्रत्येक निषेक में अपनी अपनी स्थिति पड़ी है, फिर भी हम कंसीडर करते जो मैक्सिमम है वहां की स्थिति बंध में भी हमने ऐसा देखा था सर्व बंधन और सर्व उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट, वहां प्रश्न भी पूछा गया था जो सर्वबंध कहते हैं तो उत्कृष्ट अलग से क्यों कहते हैं, तो थोड़ा डिफरेंस है उसमें जो कथन है। सर्वबंध होता होगा ही बिल्कुल, फिर भी वहां सर्व ने सभी अनुभाग बंध है इतना ही कहना था, क्योंकि जो उत्कृष्ट को बांध रहा है वो जगन्य से लेकर उत्कृष्ट तक सभी अनुभाग बंधेंगे, उसके अकेले उत्कृष्ट उत्कृष्ट नहीं बंधेंगे, अलग अपेक्षा से कथन है, कथन में अपेक्षा है बस, बात वही है। इसी प्रकार सात कर्मों के विषय में जानना चाहिए, इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। अभी अनुयोग 6 और 7 नंबर, जघन्य बंध अजघन्य बंध प्ररूपणा, जो जघन्य बंध और अजघन्य बंध है उसका यह निर्देश है, ओघ और आदेश। ओघ से ज्ञानावरणीय कर्म का अनुभाग बंध क्या जघन्य बंध होता है या अजघन्य बंध होता है, तो कहते जघन्य बंध भी होता है और अजघन्य बंध भी होता है, सबसे जघन्य अनुभाग को बांधता है इसलिए जघन्य बंध होता है, और उससे अधिक अनुभाग को बांधता है इसलिए अजघन्य बंध होता है। हाँ, परंतु जो हम कहेंगे तो मैक्सिमम कितना बांधा वहाँ उसको लेते हैं। देखो देखो, आपने जो प्रश्न पूछा है, जब हम सर्व बंध कहेंगे वो जघन्य से लेकर उत्कृष्ट सब बंध रहे हैं, बात ख्याल में, परंतु अभी जब हम जघन्य या उत्कृष्ट की बात करेंगे, जहाँ जघन्य बंध हो रहा है वहां हम सर्व नव सर्व की अपेक्षा बात नहीं कर रहे, मैक्सिमम अनुभाग कितना बन रहा है उसकी बात है, उसके ऊपर के वहां नहीं बन रहे, यही तो डिफरेंस है उसमें, नहीं समझे। कैसे होगा जघन्य बंध, कैसे होगा जघन्य स्पर्धक का बंधना जघन्य बंध नहीं कहला, तो वही तो मैं कहना चाहती हूँ।
नहीं, वो तो बराबर है, मैं समझ गया, जो विद्या दृष्टि जो बांधता है उसको भी जघन्य स्पर्धक होगा,
उसके बंध में जघन्य स्पर्धक होगा इसलिए उसको जघन्य बंध नहीं कहते, वही तो डिफरेंस बता रही हूँ मैं। ये जघन्य है अनुभाग मिनिमम, ये उत्कृष्ट, जब उत्कृष्ट बंध होता है तो सर्व बंध होता ही होता है। अब मान लेते श्रेणी में वो 10वें गुण स्थान के अंत में मिनिमम बंध हुआ, ये जघन्य बंध हुआ, तो जघन्य बंध हुआ तो जो बंध होता है बंध के समय जो उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट जघन्य अजघन्य कहलाता है, तो अंतिम स्पर्धक किस पोजीशन पर उसको कहने में आता है। उस समय मैक्सिमम विशुद्धि में वहां का जो मैक्सिमम अनुभाग वाला जो स्पर्धक है उसका जो अनुभाग है उसको कहेंगे जघन्य बंध हुआ, परंतु ये तो जघन्य अनुभाग है, यहाँ का पहला स्पर्धक है ये अंतिम स्पर्धक है, जब अनुभाग बंद कितना हुआ कहेंगे तो अंतिम स्पर्धक के अनुभाग को कहेंगे इतना बंद हुआ। हाँ, जघन्य स्पर्धक तो होगा ही, पहला स्पर्धक तो होगा हर जगह। अपर मोस्ट लेना, उत्कृष्ट या जघन्य में अपर मोस्ट लेवल बताना है, और सर्व में यहाँ से लेकर यह सब सर्व आए, पहले से लेकर वो सब सर्व कहलाएंगे। अभी इतना बंद हुआ ये उसका मैक्सिमम है उस समय का, तो वहाँ ये नो सर्व है क्योंकि सभी स्पर्धक उसने नहीं बांधे, उसको नो सर्व कहेंगे। वो अभी आगे आएगा विषय, अभी अभी से क्यों चिंता कर रहे हैं, पूरी पुस्तक। अभी नारकी में जब सर्व विशुद्धि वाला है, ऐसी वैष्णव योजना करने वाला है, हाँ अभी आएगा सब स्वामित्व में आएगी बात। हाँ, तो यहाँ जगन ने किसको कहना उतनी बात, लेकिन तो क्या उसमें जघन्य भी होता है कि अजघन्य भी? तो कहते जब सबसे जघन्य अनुभाग को बांधता है इसलिए जघन्य बंद होता है, उससे अधिक अनुभाग को बांधता है इसलिए अजघन्य बंद होता है। इसी प्रकार सातों कर्मों के विषय में जानना चाहिए, इसी प्रकार अनाहरक मार्गना तक जानना चाहिए। अब 8, 9, 10 और 11 उसमें सादी अनादि ध्रुव और अध्रुव बंध प्ररूपणा है। केवल प्रकृति का सादी अनादि नहीं रहे, अनुभाग की अपेक्षा भी ले लेना है। यानी अभी कैसे लेना, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य और अजघन्य, इसमें सादी कौन है अनादि कौन है, जघन्य अनादि का होगा कि नहीं होगा? अश्विन भाई नहीं, उत्कृष्ट अनादि का होगा कि नहीं होगा? आप हमको पूछ
रहे
अनादि का बंधक कहना है तो प्रकृति बंध में हो गए। अभी हम ये इसमें किसमें, अनुभाग में, अनुभाग तो बंधा अनादि से है, तो क्या उत्कृष्ट अनादि से है क्या अनुत्कृष्ट अनादि से है क्या अजगन्य अनादि से है क्या, ये देखना है हम पढ़ेंगे तो ख्याल में। अभी अभी सुन दे, जो सादी बंध अनादि बंध ध्रुव बंध और अध्रुव बंध है उसका यह निर्देश है, ओग और आदेश। ओग से चार घाती कर्मों का उत्कृष्ट बंध, अनुत्कृष्ट बंध और जघन्य बंध, क्या सादी बंध है, क्या अनादि बंध है, क्या ध्रुव बंध है या क्या अध्रुव बंध है? तो कहते सादी बंध है और अध्रुव बंध है। अभी हर एक पर लगा लो, केवल अजगन्य को छोड़ लिया है। जब उत्कृष्ट कभी तो होगा ना, पहले अनुत्कृष्ट हो रहा था, बीच में कभी कभी उत्कृष्ट होगा तो उसको सादी कहेंगे, अनुत्कृष्ट वो भी सादी है, जब उत्कृष्ट के बाद होता है तो अनुत्कृष्ट को भी सादी कहेंगे। जघन्य तो श्रेणी में होगा जब जाके, तब वो तो हमेशा सादी होगी होगी। केवल अजगन्य को छोड़ा, अजगन्य में कौन कौन आए, उत्कृष्ट भी आए अनुत्कृष्ट भी आए, अजगन्य इटसेल्फ तो है ही है, तो इसलिए वो अनादि का है, अजगन्य अनादि का है, परंतु जघन्य के लिए शुरुआत है ना, श्रेणी में हुआ उसका जघन्य तो वो सादी है, कभी उत्कृष्ट होता है कभी अनुत्कृष्ट होता है, इसलिए वो भी सादी है, अजगन्य अनादि का कहिए। ये सादी अनादि किस पर लगाना है, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट के ऊपर। और कैसा है, अध्रुव है,
कभी बनता है। ख्याल में नहीं आया
फिर से, अभी हमें देखो प्रकृति बंध में पहले समझो तो हम इसमें गठित करेंगे। प्रकृति बंध में तो उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट नहीं लगते, स्थिति में उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट लगेगा, अनुभाग में उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट लगेगा। तो प्रकृति बंध में हम क्या कहते हैं, ज्ञानावरण की प्रकृति कब से बन रही है, तो अनादि से बन रही है। क्या सादी है, हाँ, जब दसवें गुणस्थान के लौट कर फिर बंधना शुरू होगा, प्रकृति बंध सादी कहलाएगा, अनादि भी कहलाएगा सादी भी कहलाएगा। क्या ध्रुव बंधन है? अभव्य में तो ध्रुव बंधन है और भव्य में अध्रुव है। ये तो प्रकृति बंध की बात समझना बहुत आसान है। अभी हम अनुभाग बंध पर घटित करते हैं। अनुभाग बंध केवल अनुभाग बंध कब से हो रहा है? तो अनादि से हो रहा है, उसमें कोई बात नहीं है। परंतु हम उस किसमें वो सादी अनादि लगाना है? तो उत्कृष्ट पर सादी अनादि लगाना है। तो उत्कृष्ट अनुभाग बंध क्या अनादि से है? तो कभी अनुत्कृष्ट होता है, कभी उत्कृष्ट होता है, तो सादी है। क्या अनुत्कृष्ट अनादि से है? नहीं कह सकते, क्योंकि उत्कृष्ट के बाद अनुत्कृष्ट होगा तो वो भी सादी हो जाएगा। तो परंतु जघन्य के बाद कभी अजघन्य नहीं होगा, इसलिए अजघन्य सादी नहीं हो सकता। क्योंकि जघन्य कब है? क्षपक श्रेणी के लास्ट में है जघन्य बंध। क्षपक श्रेणी के दसवें गुण स्थान के अंत में ज्ञानावरण का जघन्य बंध है, अनुभाग बंध वहां पर और स्थिति बंध भी। तो उसका लौट कर अजघन्य दोबारा हो वे ये नहीं हो सकता है, इसलिए अजघन्य सादी नहीं है। परंतु जघन्य के लिए आदि है, शुरुआत है, क्योंकि अनादि से अजघन्य हो रहा था और वहां जाके उसने जघन्य पहली बार बांधा तो जघन्य सादी हुआ, उत्कृष्ट भी सादी हुआ, अनुत्कृष्ट भी सादी हुआ। एक ये बातें ख्याल में आई बात? तो यहाँ क्या लिखा है? सादी है। और कैसा अध्रुव है? क्या लगातार उत्कृष्ट 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 होता रहता है किसी को? तो नहीं। क्या लगातार अनुत्कृष्ट अनुत्कृष्ट? नहीं होता। क्या जघन्य लगातार होता रहेगा? तो नहीं होगा, क्योंकि वो तो बंधे ही मिटकर तो अभी परमात्मा बन जाएंगे। तो इसलिए अध्रुव है। ये समझ में आई बात सादी और अध्रुव की? कौन कौन से सादी और अध्रुव है? उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट और जघन्य। नहीं, तीसरी लाइन में देख, मैं अभी तीसरी लाइन की बात मैंने अभी समझाई आपको। दूसरे लाइन में पूछा गया था चार घाती कर्मों का उत्कृष्ट बंध, अनुत्कृष्ट बंध, जघन्य बंध क्या सादी है, क्या अनादि है, ध्रुव है क्या अध्रुव है। तो वहां बताया गया था सादी है और अध्रुव है। यहां तक तो बात ख्याल में, मैंने यहां तक समझाया अभी तक। अब अजघन्य की बात पूछेंगे। अजघन्य बंध क्या सादी बंध है, क्या अनादि बंध है, क्या ध्रुव बंध है या क्या अध्रुव बंध है? तुम कहेंगे सादी बंध है। कब सादी बंध कहे? नहीं नहीं, अजघन्य अनुभाग, अनुभाग की बात यानी बंध नहीं था और बंध नहीं था और होने लगा, यानी जघन्य होकर हुआ ऐसा नहीं, नहीं हुआ था, बंध ही रुक गया था और फिर होने लगा, इसलिए उसको अजघन्य को भी सादी कहा। दोबारा, अनुभाग बंध ही नहीं था ना वहां पर, ज्ञानावरण का ही बंध नहीं था ग्यारहवें में, तो उतरने वाला दसवें में बंध शुरू हुआ, इसलिए उसको सादी कहा। क्योंकि उपशम श्रेणी के दसवें के अंत में भी अजघन्य हुआ था, ग्यारहवें में बंध ही रुका था और लौटकर फिर उसका अजघन्य शुरू हुआ, इसलिए अजघन्य का अंतर हुआ, इसलिए उसको सादी कहा। नया शुरू हुआ ना तभी अंतर्मुख के बाद। क्या अनादि बंध है? ये दो नीचे अनादि बंध है, क्योंकि जब तक वहां नहीं पहुंचा था क्षपक श्रेणी के लास्ट में तब तक अनादि से उसका बंध था, इसलिए अनादि कहा। ध्रुव बंध है और अध्रुव बंध है। ध्रुव बंध क्यों? क्योंकि जो अभव है उसको तो ध्रुव बंध ही रहेगा, हमेशा ही रहेगा, इसलिए ध्रुव है। और अध्रुव बंध है क्योंकि ये मिटकर क्षपक श्रेणी चढ़कर पार हो जाएगा, इसलिए अध्रुव भी है। यहां तक तो बात ख्याल भी आई? ये ज्ञान आवरण पर यानी चारों धातु कर्मों पर बताया। वेदनीय और नाम कर्म का उत्कृष्ट बंध, जघन्य बंध और अजघन्य बंध, उत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य, अनुत्कृष्ट छोड़ दिया है। क्या सादी बंध है, क्या अनादि बंध है, क्या ध्रुव बंध है या क्या अध्रुव बंध है? तो कहते हैं सादी बंध है, और अध्रुव बंध है, क्योंकि हम देखते हैं उत्कृष्ट तो हमेशा नहीं होता है और जगन्य भी क्यों, क्योंकि इसमें तो प्रतिपक्षी होती है ना, तो इसलिए उसका बीच बीच में वो शादी भी तो हो जाएगा, चला जाएगा। और अध्रुव है, अब अनुत्कृष्ट बंध क्या शादी बंध है, क्या अनादि बंध है, क्या ध्रुव बंध है या क्या अध्रुव बंध है, तो उसके लिए भी शादी कह दिया। अब यह मूल प्रकृति है ना, यहाँ प्रतिपक्ष नहीं लेना, मैंने गलत बताया आपको, देखो वेदिनी इन जनरल लेना, यहाँ मूल प्रकृति की बात चल रही है, हम साता असाता की बात अलग नहीं लेना है। वेदिनी का बंध और कौन सा बंध, अनुवाद बंध, और उसमें भी कौन सा लगाना, उत्कृष्ट, तो उत्कृष्ट तो शादी होगा ही, अनुत्कृष्ट भी वो तो शादी भी होगा, अनुत्कृष्ट भी शादी होगा, हाँ होगा। श्रेणी की क्या जरूरत है, जब उत्कृष्ट उत्कृष्ट के उत्कृष्ट बंद वेदनीय का, अच्छा हाँ उसका उत्कृष्ट लेना,
अच्छा उत्कृष्ट श्रेणी से उत्कृष्ट,
हाँ वेदनीय इन जनरल में सांता का उत्कृष्ट लेना। ज्ञानावरण का तो हमने जघन्य लिया, परंतु वेदीय नाम ये ने उच्च गोत्र और यशस कीर्ति लेना, सॉरी साता वेदनी और यशस कीर्ति, शादी और अध्रुव है
उसका तो उत्कृष्ट अपर श्रेणी में अंतर होता है ना, जो अपर श्रेणी में जो उत्कृष्ट होता है वो इतना उत्कृष्ट होगा तो शपथ श्रेणी में आता है।
क्या क्या
साता वेदनी का उत्कृष्ट अनुपात शपथ श्रेणी में करते जाते उच्च श्रेणी में,
इसलिए जगन्य को लिया ना शादी में, नहीं जघन्य को शादी में कहाँ लेना है,
उत्कृष्ट बंद और जघन्य का और अजघन्य तीनों में
अनुत्कृष्ट को छोड़ा,
अनुत्कृष्ट को छोड़ा,
अलग अलग प्रकृतियों पर घटित करना है, अलग अलग प्रकृतियों पर होगा ना जघन्य और अजघन्य, अनुत्कृष्ट के लिए क्या लेना श्रेणी, अभी मैं ले रही हूँ वेदिनी और नाम, उसका उत्कृष्ट बंध तो हमने देखा कैसे है, शादी और अध्रुव है, उत्कृष्ट क्षपक में होगा, फिर जगन्य बंध, ये अन्यत्र होगी ना, जगन्य अजगन्य होते रहेंगे, वो शादी अनादि हो, शादी अनादि शादी के चलेगा, जगन्य अजगन्य, इसलिए जगन्य और अजगन्य शादी बंद हो गया, वो अन्य प्रकृति पर घटित हो गया वेदिनी के जगन्य, अनुत्कृष्ट के लिए जगन्य अजगन्य भी अनुत्कृष्ट होता है ना, जगन्य बंध में किसको लेना है, एक इंद्रियों को, शादी है अनादि है, इसका स्वामी निकालना पड़ेगा, विशेषार्थ ही देखेंगे, विशेषार्थ पढ़ेंगे, देखो अभी तक जो पढ़ा है उसका विशेषार्थ होगा, चार घाती कर्मों के, पहले घाती कर्मों के बाद फिर वेदनीय पर जाएंगे, उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध कादाचित को होते हैं, कभी कभी होते हैं, तथा जगन्य अनुभाग बंध क्षपक श्रेणी में होता है, इसलिए तीनों शादी और अध्रुव के भेद से दो दो प्रकार के होते हैं। अब रहा अजगन्य अनुभाग बंध, जगन्य अनुभाग बंध के प्राप्त होने के पूर्व तक अनादिकाल से जितना भी अनुभाग बंध होता है वह सब अजगण्य होता है। ये ज्ञान चार रहति के लिए बताया। तथा उपशम श्रेणी में चार घाती कर्मों की बंध विच्छित्ति होकर पुनः इनका बंध होने लगता है, इसलिए अजगन्य अनुभाग बंध के सादि अनादि ध्रुव और अध्रुव चारों विकल्प बन जाते हैं। वेदिनी और नाम कर्म का जगन्य और अजगन्य अनुभाग बंध कादाचित का होता है, वहां उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट को कादाचित कर लिया था, यहाँ जगन्य अजगन्य अनुभाग बंध कादाचित कर लिया। और उत्कृष्ट अनुभाग बंधक शपक श्रेणी में होता है, ये बात आपने बताई थी ना, सातावेदनी में ले लेना। इसलिए तीनों सादी और अध्रुव के भेद से दो दो प्रकार के होते हैं। अब रहा अनुत्कृष्ट अनुभाग बंधक, सो उत्कृष्ट अनुभाग बंधक के प्राप्त होने के पूर्व तक वह अनादि है। जैसे उसमें उल्टा घटित किया था ना, वो घाती कर्म तो अप्रशस्त थी, इसमें प्रशस्त में घटित करे, यानी अनादि से अनुत्कृष्ट बंध हो रहा था। उत्कृष्ट अनुभाग बंध के प्राप्त होने के पूर्व तक वह अनादि है। उपशम श्रेणी में उस अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध की विच्छित्ति होकर पुनः उसका बंध होने पर वह सादि है, यानी उत्कृष्ट के बाद वो अनुत्कृष्ट नहीं बनता है, बंध रुका था और बाद में हुआ था, इसलिए उसको अनुत्कृष्ट को सादि कहा। इसलिए अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध के सादि अनादि ध्रुव और अध्रुव ये चारों विकल्प बन जाते हैं। अब आगे पढ़कर फिर वापस आते हैं। अनुभाग बंध होता है क्या वहाँ पर? प्रकृति बंध नहीं की बात चल रही, अनुभाग बंध की बात चल रही। आपने कहा ग्यारह गुण स्थान में भी तो बनती है ना सातावेदनी, परंतु उसमें अनुभाग बंध नहीं हो रहा है, तो अनुभाग बंध की विच्छित्ति होकर फिर दोबारा बंध नहीं लगा। तो ये हो गए वेदिनी और नाम कर्म का। अब हम पांच पेज पर पढ़ रहे हैं, फिर विशेषात में बाद में जाएंगे। गोत्र कर्म का उत्कृष्ट बंध और जघन्य बंध, क्या सादी बंध है, क्या अनादि बंध है, क्या ध्रुव बंध है या क्या अध्रुव बंध है? तो कहते सादी बंध और अध्रुव बंध, और अनुत्कृष्ट बंध और अजगन्य बंध, क्या सादी बंध है, क्या अनादि बंध है, क्या ध्रुव बंध है या क्या अध्रुव बंध है? तो कहते सादी बंध है, अनादि बंध है, ध्रुव बंध है और अध्रुव बंध है। अब विशेषार्थ देखो, गोत्र कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग बंधक शपक श्रेणी में और जघन्य अनुभाग बंध सातवीं पृथ्वी में सम्यक्त्व के अभिमुख होने पर प्राप्त होता है। छह नंबर पर, छह पेज पर विशेषार्थ में जहां हमने छोड़ा था, चार चार आठ बारहवीं लाइन, यानी उच्च गोत्र है ना वहां पर शपक श्रेणी में, और जघन्य अनुभाग बंध। हाँ, जघन्य के लिए निज गोत्र को लेना, क्योंकि सम्यक्त के सन्मुख है और उसके अंतिम समय तक नीच गोत्र बंधेगा, तो नीच गोत्र का जघन्य कौन बांधेगा, अनुभाग की बात है तो वहां पर बंधेगा। सम्यक्त के अभिमुख होने पर प्राप्त होता है, इसलिए दो सादी और अध्रुव है। उत्कृष्ट के लिए शपक श्रेणी ली, जघन्य के लिए सातवीं पृथ्वी में सम्यक्त्व का अभिमुख लिया, तथा इनके प्राप्त होने के पूर्व तक अनुत्कृष्ट और अजघन्य अनुभाग बंध अनादि है। उपशम श्रेणी में इनकी बंध विच्छित्ति होकर पुनः इनका बंध होने पर यह सादी है, इसलिए अनुत्कृष्ट और अजघन्य अनुभाग बंध के सादी अनादि ध्रुव और अध्रुव ये चारों विकल्प होते हैं। उपशम श्रेणी में जो लास्ट में बनता है उसको हम अनुत्कृष्ट भी कह सकते हैं, अजगन्य भी कह सकते हैं। यहाँ सर्वत्र ध्रुव अभव्यों की अपेक्षा और अध्रुव भव्यों की अपेक्षा कहा है। आयु कर्म का बंध कादाचित कहे, ये पढ़ना पहले हमने 5 नंबर के पेज पर नीचे से छठी लाइन आयु कर्म का उत्कृष्ट बंध अनुत्कृष्ट बंध जघन्य बंध और अजघन्य बंध क्या सादी बंध है क्या अनादि बंध है क्या ध्रुव बंध है क्या अध्रुव बंध है। तो सादी बंध है क्यों कभी कभी बनती है और बनती नहीं रहती तो अध्रुव बंध है। इसी प्रकार भी पूरा पढ़ लेते ओह के समान ये जो कथन हुआ ये और कहां कहां लागी हो लागू होगी। ओह के समान मत्य ज्ञानी श्रुता ज्ञानी कौमा असंयत अचक्षुदर्शनी भव्य और मिथ्या दृष्टि जीवों के जानना चाहिए। इतनी विशेषता है भव्य जीवों में ध्रुव बंध नहीं होता। शेष मार्गणों में सादी और अध्रुव बंध होता। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। अश्वमेध नित्य दृष्टि में घटित करेंगे ऊपर जो हमने देखा ज्ञानावरण का वैसा ही देखा ना मिथ्या दृष्टि में ऐसा ही घटित करना है। मिथ्या दृष्टि में ज्ञानावरण का अनादि कौन सा है अच्छा अनुत्कृष्ट अनादि के अजगन्य अनादि से
अजगन्य
ज्ञानावरण में अजगन्य अनादि से जगन्य कब होगा उसका हाँ सातवें के सन्मुख वाले को होगा। इन्हें हम सोच सकते हैं यहाँ पर अभी स्वामी तो में बात क्लियर हो गई। हाँ। शेष मार्गणाओं में सादी और अध्रुव बंध होता है। इसी प्रकार अनाहरक मार्गणा तक जानना चाहिए। अब ये विशेषार्थ का जो रह गया था उसको पढ़ेंगे। आयु की बात चली थी ना मिला आयु कर्म का बंध कादाचित कहे इसलिए इसके उत्कृष्ट आदि चारों के सादी और अध्रुव ये दो ही विकल्प होते हैं। मत्य ज्ञानी श्रुता ज्ञानी असंयत और चक्षुदर्शनी भव्य और मिथ्या दृष्टि इन मार्गणाओं में यह ओह प्ररूपणा अविकल बन जाती है यानी वैसी की वैसी क्योंकि एक तो ये अनादिकाल से सदा बनी रहती है दूसरे गुण प्रतिपन्न होने के बाद गुण प्रतिपन्न गुणस्थान को आरोहण हुआ ऊपर के गुणस्थानों में गया पुनः मिथ्यात्व में आने पर इनकी प्राप्ति संभव है इसलिए वो सादी भी हो जाते हैं ना। उसमें भी अचक्षुदर्शनी और भव्य मार्गणा गुण प्रतिपन्न जीवों के भी क्रम से क्षीण मोह और अयोगी केवली गुणस्थान तक पाई जाती है। अचक्षुदर्शनी तो क्षीण मोह तक और भव्य मार्गणा अयोगी तक इसलिए इन सब मार्गणाओं में ओह प्ररूपणा के समान निर्देश किया है। मात्र भव्य मार्गणा में ध्रुव विकल्प घटित नहीं होता इतना विशेष जानना चाहिए। इसका अर्थ ख्याल में आ रहा है वो चक्षुदर्शनी जीव कहेंगे तो पहले से 12 गुण स्थान तक अचक्षुदर्शनी है तो जो अभी हमने ओघ में घटित किया था ज्ञानावरण कण वगैरह वो वहां पर भी घटित होगा। अचक्षुदर्शनी में ओघ के समान सब कुछ घटित होगा भव्य में भी घटित होगा उसमें वो ध्रुव लेना ध्रुव नहीं लेना। शेष सब मार्गणाएं यथासंभव बदलती रहती है इसलिए उनमें उत्कृष्ट आदि चारों सादी और ध्रुव ये दो प्रकार के ही प्राप्त होते हैं। यद्यपि अभव्य मार्गणा ध्रुव है फिर भी उसमें उत्कृष्ट आदि अनुभाग बंधों के अनादि और ध्रुव न होने से साधि और अध्रुव ये दो विकल्प ही घटित होते हैं। अब स्वामित्व प्ररूपण, आगे स्वामित्व का कथन करने के लिए वहाँ ये तीन अनुयोग द्वार होते हैं, प्रत्ययानुगम, विपाक देश और प्रशस्ता प्रशस्त प्ररूपणादि। ये नए नाम आ गए ना, प्रत्यय अनुगम, प्रत्ययानुगम, विपाक देश और प्रशस्ता प्रशस्त प्ररूपणादि। अब देखेंगे क्या क्या है। प्रत्ययानुगम की अपेक्षा छह कर्म, मिथ्यात्व प्रत्यय, असंयम प्रत्यय और कषाय प्रत्यय होते हैं। ये प्रत्यय क्या होता है मालूम है? आश्रय, हाँ, उसके कारण, उसका बंध का कारण, यानी पुराने कर्मों का उदय रूप यहाँ प्रत्यय ले सकते हैं। यह दीव के भावों को भी लेना है तो वो भी ले सकते हैं। प्रत्यय ने वो बंध के कारण, उसको प्रत्यय कहा। छह कर्म मिथ्या तो प्रत्यय है, यानी मिथ्या तो प्रत्यय भी, असंयत प्रत्यय भी, कषाय प्रत्यय भी। वेदनीय को तो हम योग प्रत्यय में भी लेंगे। प्रत्यय ने बंध का कारण, इसे उसका अर्थ होगा। देखो क्या कहना चाहते हैं, छह कर्म को अलग लिया, वेदनीय को अलग लिया, आयु कहाँ लिया? छह कर्म मिथ्या तो प्रत्यय, असंयत प्रत्यय, कषाय प्रत्यय होते हैं, और वेदनीय कर्म मिथ्या तो प्रत्यय, असंयम प्रत्यय, कषाय प्रत्यय और योग प्रत्यय होता है, क्योंकि ये मुट जाने पर भी वेदनीय कर्म तो बनता है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए, इसका विशेषार्थ। आयु, आयु को छोड़ा होगा मेरे ख्याल से। हमें विशेषार्थ पढ़ेंगे। यहाँ प्रत्यय शब्द से बंध के हेतु उनका ग्रहण किया। देखिए आगे ना, बात बंध के हेतु में कारण कहा था। बंध के हेतु चार है, मिथ्या तो, असंयम, कषाय और योग, जिसको आश्रय भी कहते हैं, उसी को प्रत्यय कहते हैं। अन्यत्र प्रमाद को भी बंध का हेतु कहा है, किंतु वह असंयम और कषाय की मिली जुली अवस्था है। प्रमाद क्या है? असंयम और कषाय की मिली जुली अवस्था, इसलिए यहाँ उसका पृथक से निर्देश नहीं किया है। वेदनीय का केवल योग हेतु भी बंध है, भी लगाए, यानी वेदनीय तो मिथ्यात्व से भी बंधे, असंयम से वो तो बंधेगा ही बंधेगा, परंतु बिना इनके भी बंधेगा, इसलिए योग हेतुक भी लिखा है। अकेला है, योग हेतु से होता है ऐसा नहीं, उससे भी होता है, इसलिए उसके बंध के हेतु चार कहे। शेष छह कर्मों का केवल योग हेतु बंध नहीं होता, यानी मात्र योग से नहीं बंध होता, इसलिए उसके बंध के हेतु तीन कहे हैं।
अनुमत की बात है, यहाँ पे योग हेतु कहा है,
पहले अभी तो अनुभव की बात नहीं उठाई है, केवल वहाँ प्रत्यय अनुगम वगैरह क्या क्या है उसको बता रहे हैं। पूरा पढ़ेंगे तो आपको ख्याल नहीं आ जाएगा। यहाँ आयु कर्म का किम निमित्तक बंध होता है इसका निर्देश नहीं किया, कारण कि उसका सार्वकालिक बंध नहीं होता, यानी हमेशा नहीं बनती है। अब हम ऐसा भी देख सकते आयु तो सातवें गुण स्थान तक ही बनती है, तो उसमें भी हम मिथ्या तो असंयम कशेष वो सब सब है ही, योग तो उसके वहां भी होता है, अकेले योग से तो नहीं बंधेगी। यहाँ इतना विषय जानना चाहिए, जहाँ मिथ्यात्व बंध का हेतु है वहाँ शेष सब है। हम हमेशा समझे ना, ये तो चार है या पांच हम नहीं, तो जहाँ मिथ्यात्व है तो वहाँ सब है। मिथ्या तो चला जाएगा तो भी असंयम कषाय और वो आगे वाले हैं। इस तरह से असंयम के सद्भाव में मिथ्यात्व है भी और नहीं भी है। क्या कहा? जहाँ हम असंयम कहेंगे तो हो सकता है केवल असंयम कषाय और योग है, या मिथ्यात्व के साथ भी असंयम है, परंतु जहाँ असंयम है वहां मिथ्यात्व है ही, ऐसा नहीं कहेंगे। चौथे वाला है असंयम है, उसके मिथ्यात्व नहीं है, इसलिए कहा असंयम के सद्भाव में मिथ्यात्व है भी और नहीं भी है, किंतु कषाय और योग अवश्य है, यानी आगे वाले तो उसमें होते ही होते हैं, पूर्व वाले प्रत्यय वहां हो भी या नहीं भी हो। कषाय के सद्भाव में मिथ्यात्व और असंयम है भी और नहीं भी है, किंतु योग अवश्य है। योग के सद्भाव में प्रारंभ के तीन है भी और नहीं भी है। अब दूसरा बताया था विपाक देश, विपाक देश की अपेक्षा छह कर्म जीव विपाके, जीव विपाके ने उसका फल जीव के गुणों के साथ उसका निमित्त बनता है। आयु कर्म भव विपाके है तथा नाम कर्म जीव विपाके, उद्गल विपाके और क्षेत्र विपाके है। ये क्षेत्र विपाके कौन सा है? अनुकूल विग्रह गति में मात्र उसका उदय है, उसको क्षेत्र विपाके का है। अभी हम मूल प्रकृति की बात करें ना, इसलिए वो उसका नाम नहीं लिया, नाम कर्म ही जीव विपाके है, नाम कर्म ही पुद्गल विपाके, ऐसा ले लिया उन्होंने। जैसे गति नाम कर्म जीव विपाके कहेंगे और गत्यानुकूल क्षेत्र विपाके कहेंगे, और बाकी स्पर्श रस गंध वर्ण है साधारण प्रत्येक है, वो तो पुद्गल विपाके शरीर में उसका फल मिलता है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए, केवल आयु कर्म ही बहु विपाकी है। प्रशस्त अप्रशस्त प्ररूपणा की अपेक्षा, चार घाती कर्म अप्रशस्त होते हैं, वेदनीय आयु नाम और गोत्र कर्म प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों प्रकार के, इसी प्रकार अनाहरक मार्गना तक जानना चाहिए। विशेषार्थ अन्यत्र जिनकी पुण्य और पाप संज्ञा कही है उन्हीं के यहाँ प्रशस्त और अप्रशस्त संज्ञा दी है। चार घाती कर्मों का अनुभाग बंध अप्रशस्त ही होता है तथा शेष चार कर्मों का अनुभाग बंध दोनों प्रकार का होता है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है, आशय यह है कि शेष चार कर्मों के अवान्तर भेदों में कोई प्रशस्त प्रकृतियां होती है और कोई अप्रशस्त। चार कर्मों के नहीं, चार अघाती कर्मों के।
विशेषार्थ में दूसरी लाइन क्या लिखा है? चार अघाती कर्मों का अनुभाग
घाती चाहिए। चार कर्मों के नहीं, अघाती कर्मों के अवान्तर भेदों में कोई प्रशस्त प्रकृति है कोई अप्रशस्त है, इसलिए वहां पर इन चार कर्मों को दोनों प्रकार का कहा है। इस अर्थ पद के अनुसार, यानी ये जो उन्होंने पहले प्रत्यय अनुगम विपाक देश प्रशस्त अप्रशस्त बता दिया, अभी इसके अनुसार स्वामित्व दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है, उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओग और आदेश। ओग से ज्ञानावरण दर्शनावरण मुनि और अंतराय कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है, ये मूल प्रकृतियों को लिया। पंचेंद्रिय, संगी, मिथ्या दृष्टि सब पर्याप्तियों से पर्याप्त साकार जागृत नियम से उत्कृष्ट संकलेश परिणाम वाला। हाँ कौन चाहिए, और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित, क्योंकि उत्कृष्ट संकलेश परिणाम वाला भी कोई एक परिणाम अनेक अलग अलग अनुभागों को बांधता है, इसलिए फिर दोबारा कहा उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर चार गति का जीव उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है, अभी इसमें प्रशस्त वाले को ले लेना। सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान के अंतिम उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर क्षपक लिया उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है, साकार जागृत तत्प्रायोग विशुद्ध युक्त और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अप्रमत्त संयत जीव आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। तैतीस सागर की स्थिति भी वहां उत्कृष्ट बांध रहा है, और देवायु में विशुद्धि के काल में अनुभव भी उसका ज्यादा है। ये आयु इन जनरल लेना था, इसलिए अलग अलग आयु पर वो उत्तर प्रकृतियों में बताएंगे। इसी प्रकार ओग के समान पंचेंद्रिय पर्याप्त, त्रस पर्याप्त, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय इसको उत्कृष्ट बांधता है ना मिथ्या दृष्टि, इसलिए वो जिन मार्गणों में आते उसको ले लिया। पांच मन योगी, पांच वचन योगी, काय योगी, औदारिक काय योगी, लोभ कषाय वाले को मान लेना। लोभ कषाय वाला क्यों लिया, क्योंकि वेदिनी नाम गोत्र का उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी सूक्ष्म सांप्राय के अंत में लिया है, इसलिए यहाँ लोभ वाला लिया। चक्षुदर्श
हाँ,
ये जो हमने पहले कहीं पर वो अनुभाग के 64 दंडक देखे थे, कौन से आयु का कौन सा उत्कृष्ट अनुभाग बिना दिखोगा उसका अल्प वो तो बताएंगे, तभी तो बताया ना इसको देवायु को ले लिया। केवल स्थिति है इसलिए उसका अनुभाग वहां अधिक होगा इसीलिए कह सकते। अप्रमत्त तो देवायु का ही बनता है, क्योंकि मनुष्य है ना, अभी मनुष्य समय दृष्टि देवायु को ही बांधेगा। ये अपनी बात पहले अनुभाग संबंधी हुई थी, और उसमें ये पूरा ही मेरे ख्याल से 64 उसके अल्पभूतों के बताए थे कौन से कर्म से कौन सा कर्म का अनुभाग अधिक है। यही तो अभी आएगी, अभी हम करेंगे ना, नहीं तो पूरी पुस्तक में क्या पढ़ेंगे। चक्षुदर्शनी अचक्षुदर्शनी, क्योंकि बारहवें गुणस्थान तक घटित होते थे। भव्य संगी और आहारक जीवन के जानना चाहिए, इन मार्गणाओं में चारों गतियों और दस गुण स्थानों की प्राप्ति संभव होने से वो भी प्ररूपना बन जाती है, क्योंकि अनुभाग बंधे दसवें तक है इसलिए उसको ले लिया है आदेश से। अब मार्गनाम में देखेंगे, नरक गति में घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? सब पर्याप्तियों से पर्याप्त साकार जागरूक संकलेश युक्त घाती कर्म है ना, इसलिए संकलेश वाला लेना, ये कौमा कौमा दे लेना, पर्याप्तियों से पर्याप्त कौमा साकार कौमा जागृत कौमा संकलेश युक्त और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर मिथ्यादृष्टि नारकी घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? नारकी में ले रहे और घाती कर्म ले रहे, आप क्या पूछ रहे? नहीं, अभी आदेश से बात, मार्गनाओं में नरक गति में नारकी जीव ज्ञानावरण दर्शनार्थ मोनि अंतराय बांध रहे। नरक गति में तो नारकी है ना बांधने वाले, इसलिए उसको अन्यतर, अन्यतर लिखते तो भी बात से घटित होती है, क्योंकि नरक गति में बांधने वाले वही तो है, फिर भी नारकी लिख दिया। अब वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? अब जो साकार कौमा जागृत कौमा सर्व विशुद्ध, क्योंकि वेदनीय नाम और गोत्र में उत्कृष्ट अनुभाग तो प्रशस्त प्रकृतियों में होगा, अब नारकियों में तो चौथे गुण स्थान में अधिक विशुद्धि होगी, तो वहां की बात देखेंगे। तो क्या साकार जागृत सर्व विशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर सम्यक दृष्टि नारकी उक्त तीन कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। अब वहां कौन कौन सी बंदी क्या है अपना विषय नहीं, अभी यहाँ पर हम यहाँ केवल मूल प्रकृतियों की बात देख रहे हैं। वेदनीय में तो साता वेदनीय लेना है, नाम के वहां बंधे योग्य जो है नारकी है, तो कौन सी बंधेगी और कितनी बंधेगी? अश्विन भाई नारकी में देख रहे हैं, वेदनीय में तो उत्कृष्ट अनुभाग में तो साता वेदनी को लेना, गोत्र में तो उच्च गोत्र को लेना, नाम में क्या क्या लेना? कितनी बनती है? 28 तो देव नारकी के साथ बनती है,
ये तो तीस बात देनी पड़ेगी,
वो तो छोड़ देना उसको, तो मनुष्य गति युत वाला लेना पड़ेगा, उसमें भी प्रशस्त प्रकृतियां है, उसकी जो सम्यक दृष्टि है तो प्रशस्त बांधेगी, और उसमें जो कुछ ऑप्शनली बनती है उसमें प्रशस्त वाले ले लेना। साकार जागरूक ये हो गया, समय दृष्टि नारकी उक्त तीन कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? साकार जागृत तत्प्रायोग विशुद्धि युक्त और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर समय दृष्टि नारकी आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। इसी प्रकार सातों पृथ्वियों में जानना चाहिए, अभी सातवीं पृथ्वी वाला तो तीन इंच आयु बांधेगा, इतनी विशेषता है। सातवीं पृथ्वी में आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? तो कहते सब पर्याप्तियों से पर्याप्त साकार जागृत तत्प्रायोग्य विशुद्धि युक्त और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर मिथ्यादृष्टि आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। आप लेना प्रायोगिक लब्धि में कहाँ पर रखो रखो
तो पहले स्थान पे आएगा
क्योंकि इनका आयु कर्म का बंध रुकेगा
पहले स्थान पर तो वहाँ पे लेना है कि
पहले स्थान पर यानी अभी उसके अन्य आयु बंधेगी तीन इंच आयु बनती है
पहले स्थान पे तो वो लेना कि तत्काल युक्ति विषम में आयु
क्या 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 क्या
तत्काल
वहाँ पर लेना है बिल्कुल सातवें नरक में वहीं पर लेना है बंधा प्रसरण के जहाँ तिरियन चायु का बंध का बंध रुक जाता है वहाँ पर यहाँ लिखो ना सब पर्याप्ति में साकार जागृत तत्प्राय के विशुद्धि युक्त विशुद्धि यहीं पर ज्यादा
मैंने वो पूछा
कि विश्वविद्यालय में उस योग जिसकी प्रायोगिक लब्धि के बाद
मैंने इसीलिए पूछा कि प्रायोगिक लब्धि में लेना है कि तत्प्रायोगिक विशुद्ध
लिखा तत्प्रायोगिक विशुद्ध क्योंकि उनके लिए कहाँ तक बंधेगी उसी स्थान पर उसकी बंध विच्छेद होगी हाँ हो गया ना नारकी का तीरियंचों में घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है संगी मिथ्या दृष्टि सब पर्याप्तियों से पर्याप्त जहां कौमा लगाने वाला लगा लो साकार जागृत सर्वसंक्लेश युक्त और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर पंचेन्द्रिय तीरियंच घाती कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है वेदनीय कौमा नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है साकार जागृत सर्व विशुद्धि युक्त और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर संहिता संयत तीरियंच उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध के स्वामी है आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है संगी मिथ्या दृष्टि सब पर्याप्तियों से पर्याप्त साकार जागृत तत्प्रायोग संकलेश युक्त अब संकलेश लिया और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर पंचेन्द्रिय तीर्यंच आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है देखो यहाँ मेरे ख्याल से नरक भी ले सकते हैं क्योंकि दो में जाएगा तो कितना करेगा 22 इनको कहना है देवायु का उत्कृष्ट होगा कि नरकायु का उत्कृष्ट होगा वो बता रहे इसी से सिद्ध होता है
और वहाँ
क्योंकि यहाँ तो 33 सागर वाले के साथ उसका उत्कृष्ट अनुभव बंधेगा और वहाँ देवायु की 22 सागर के साथ तो उत्कृष्ट अनुभव नहीं बंधेगा जो संहिता संयतों के बनता है सॉरी अप्रमत्त के बनता था अप्रमत्त भी बांध रहा था ना जिसने शुरू किया है वहाँ अप्रमत्त तक बांधता रहेगा उसकी अपेक्षा इसका कम है इसके लिए मैक्सिमम किसका होगा नरकायु का होगा इसलिए उत्कृष्ट संकलेश वाला लिया अभी क्लियर करना है तो आगे उत्तर प्रकृति की बात है कि कितना 191 हाँ स्वामित्व उत्तर प्रकृति में स्वामित्व नारकियों में तीरियंचों में आयु कोई देख रहे केवल बराबर है तीरियंच आयु मनुष्य आयु विशुद्ध के साथ तीरियंच आयु मनुष्य आयु को लिया देवायु का विशुद्ध वाला लिया नरकायु का कहाँ लिया नरकायु हाँ तीरियंच गति तभी हमने वही तो घटित किया था क्योंकि नरकायु संकलेश में तीव्र संकलेश में अधिक अनुभाग बनने वाला तो नरकायु होगा अन्य तीनों आयु प्रशस्त प्रकृतियां हैं हाँ यानी प्रशस्त में जब ज्यादा होते कि अप्रशस्त में ये उसका अल्पभूत्व ख्याल नहीं है ये कह रहे हैं इसी प्रकार पंचेंद्रिय तीरियंच त्रिक के जानना चाहिए पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय त्रिक के ऊपर बिंदी आ गई है जरूर नहीं बस पंचेंद्रिय तीरियंच पर्याप्त जीव में चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है साकार जागृत तो क्या सोते रहते ये आप पूछिए वो भी साकार अनाकार होते हैं क्या उत्कृष्ट उत्कृष्ट संकलेश युक्त और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर संगी जीव चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी ये उनके लिए उत्कृष्ट है वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है संगी साकार जागृत सर्व विशुद्ध अब सर्व विशुद्ध लिया क्योंकि वो प्रशस्त प्रकृतियों को लेना है और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर जीव उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है अभिलब्धि अपर्याप्त है कौन सी आयु बांधेंगे मनुष्य संगी साकार जागृत तत्प्रायोग विशुद्ध युक्त और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर जीव आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है अब इसमें देख लो आप वहां पर अभी कौन सा 200 191 लब्धि अपर्याप्त में देखो 192 पर है तीरियंच आयु और मनुष्य आयु दोनों को खोल दिया या दोनों पर अलग अलग अटित कर रहे ना तीरियंच आयु का उत्कृष्ट करने वाला कौन है मनुष्य आयु का उत्कृष्ट करने वाला ऐसा लिया हुआ उन दोनों में अल्पभूत्व नहीं बता रहे अनुभाग का अल्पभूत्व यहाँ नहीं बता रहे केवल उसका स्वामी बता रहे हम अपने पेज पर आते हैं 9 नंबर पर होगी ना वहाँ उदय है ना निद्रा का उदय है या नहीं है पांच प्रकार की जो निद्रा होती है उसमें से निद्रा का उदय है कि नहीं है उसको कहेंगे जागृत या अजागृत इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त सब विकलेंद्रिय पंचेंद्रिय पर्याप्त और त्रस पर्याप्त जीवों के जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि विकलेंद्रियों में अन्यतर पर्याप्त जीवों के उत्कृष्ट स्वामित्व कहना चाहिए। ये विकलेंद्रिय की बात करेंगे तो पर्याप्त जीव उत्कृष्ट अनुभाग बंद करेंगे, क्योंकि मार्गणा विकलेंद्रिय इतनी है उसमें पर्याप्त जीव करेंगे, और बाकी मार्गणा ही मनुष्य अपर्याप्त की पंचेंद्रिय अपर्याप्त रस अपर्याप्त की गई। मनुष्य त्रिक में योग के समान भंग है, इतनी विशेषता है। घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? साकार जागृत उत्कृष्ट संकलेश युक्त और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर मिथ्या दृष्टि जीव घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। सामान्य देवों से लेकर उपरीम ग्रेवे तक के देवों में उपरीमा हिंदी में उपरीमा कहते हैं, प्राकृत में उपरीमा आता है, उपकरो चलेगा उपरीम ग्रेवे तक के देवों में नारकियों के समान भंग है। महाविचारो गुणस्थान है न, अनुदिश से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? साकार जागृत उत्कृष्ट संकलेश युक्त और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर जीव चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। शेष स्वामित्व सामान्य देवों के समान है, या तो सारे समय दृष्टि है ना, इसलिए एक इंद्रियों में अभी इंद्रिय मार्गणा में चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? सब पर्याप्तियों से पर्याप्त, हमने देखा एक इंद्रियों में उत्कृष्ट भी और हमने सीधी बंध की अपेक्षा देखी थी, और जगन्य भी बादर पर्याप्त जुबान से, तो यहाँ सब पर्याप्तियों से पर्याप्त साकार जागृत नियम से उत्कृष्ट संकलेश युक्त और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर कौन लिया? बादर एक इंद्रिय जीव। बराबर स्पष्ट उसमें छपा नहीं, एक इंद्रिय चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। वेदनी और नाम कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? सब पर्याप्तियों से पर्याप्त साकार जागृत सर्व विशुद्ध, वहां सर्व संकलेश उत्कृष्ट संकलेश वाला लिया था, घाती कर्म थे और प्रशस्त थे, अब वेदनी और नाम में प्रशस्त लेना है और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर बादर एक इंद्रिय जीव उक्त दोनों कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? साकार जागृत तत्प्रायज्ञ विशुद्ध, अभी करेंगे ना बताएंगे, उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर बादर एक इंद्रिय जीव आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग में सर्व विशुद्ध लेना, तत्प्रायज्ञ विशुद्ध लेना। गोत्र कर्म, ये अश्विन भाई को चिंता है, कोई चुप नहीं जाए। गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? सब पर्याप्तियों से पर्याप्त साकार जागृत सर्व विशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर बादर पृथ्वी का ही, देखो गोत्र कर्म का, क्योंकि उच्च गोत्र बांधने वाले को लेना है, अग्नि का एक वायु का एक जो उच्च गोत्र नहीं बांधते उनको नहीं लेना है, इसलिए वेदनी और उसमें तो उसको ले लिया, इसको अलग लिया, वेदनी और नाम को अलग लिया और गोत्र को अलग कर दिया। तो कौन है उसके बंधक? बादर पृथ्वी का एक, बादर जल का एक, बादर वनस्पति का एक जीव, गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। इसी प्रकार बादर एक इंद्रिय, बादर पर्याप्त एक इंद्रिय, बादर अपर्याप्त एक इंद्रिय, सूक्ष्म एक इंद्रिय और इनके पर्याप्त अपर्याप्त जीवन के जानना चाहिए। यानी जहाँ वो संकेश कहाँ लिखना, विशुद्ध कहाँ लिखना, इतना डिफरेंस है। उसकी अपनी अपनी मार्गणा में उत्कृष्ट बंद की बात है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो नीच गोत्र ही बांधते हैं, इसलिए उसको
छोटा
है। विशेषार्थ एक इंद्रियों में उच्च गोत्र का बंध अग्नि का एक, वायु का एक जीवन के नहीं होता, इसलिए गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी इनको छोड़कर शेष तीन बादर काय वाले जीवों के कहा है। ये तो एक इंद्रिय मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा हुआ। पृथ्वी का एक यानी काय मार्गणा की अपेक्षा बताएंगे। पृथ्वी का एक, जल का एक, वनस्पति का एक, प्रत्येक शरीर निगोद जीवों में यानी वनस्पति का एक साधारण हो गया। चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? तो सब पर्याप्तियों से पर्याप्त, साकार जागृत, नियम से उत्कृष्ट संकलेश युक्त और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर बादर जीव। ये पृथ्वी का एक, जल का एक, वनस्पति का एक, में सब में बादर लेना। चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? साकार जागृत सर्व विशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर बादर जीव उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। वेदिनी नाम गोत्र में सर्व विशुद्ध में उत्कृष्ट बंध होगा अनुभाग का, और जहां घाती कर्म लेते हैं वहां पर उत्कृष्ट संकलेश वाला लेगा। आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? तत्प्राज्ञ विशुद्ध। आयु कर्म में हमेशा तत्प्राज्ञ विशुद्ध लेते हैं। और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर बादर जीव आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। आयु कर्म में हमेशा ही वो तत्प्राज्ञ शब्द लगाए ना उन्होंने। हाँ तत्प्राज्ञ शब्द लगाए वहां पर, संकलेश में भी तत्प्राज्ञ लगाएंगे, वहां पर नरकाय में भी तत्प्राज्ञ, क्योंकि अति सर्व विशुद्ध और सर्व संकलेश में तो आयु का बंध नहीं होगा, इसलिए तत्प्राज्ञ शब्द आयु के लिए लिया है, बाकी में सर्व विशुद्ध लिया। इसी प्रकार इनके बादर, ये कायिकों के बादर, बादर पर्याप्त, बादर अपर्याप्त और सब सूक्ष्म जीवों के भी जानना चाहिए। इतनी विशेषता है, जिस जिसका उद्देश्य हो वहां उसका नाम ग्रहण करके स्वामित्व प्राप्त करना चाहिए। जिस जिसका नाम, जैसे पृथ्वी कायिक की बात है तो बादर पृथ्वी कायिक या बादर पृथ्वी कायिक पर्याप्त, बादर पृथ्वी कायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म पृथ्वी कायिक, ऐसे अलग अलग नाम लेके आगे की प्ररूपणा जहाँ संकलेश है जहाँ विशुद्ध है वो सब ऐसा ही कहेंगे, कथन ऐसा ही होगा। अब ये दो कायिकों को अलग निकाला, अग्नि कायिक और वायु कायिक जीवों में चार घाती कर्मों और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? तो सब पर्याप्तियों से पर्याप्त, साकार जागृत और नियम से उत्कृष्ट संकलेश युक्त बादर जीव उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध के स्वामी है। गोत्र ये क्योंकि निज गोत्र ही मानता है, इसलिए वो भी अप्रशस्त है। और इसलिए वो उत्कृष्ट संकलेश वाला लिया। वेदनी और नाम कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध के स्वामी कौन है? अभी ये तो साता और वो नाम कर्म के उत्कृष्ट से प्रकृति भी बांधेगा, तो कहते साकार जागृत सर्व विशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर बादर उक्त जीव ने अग्नि का या वायु का उक्त दोनों कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध के स्वामी है। आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? कौन सी आयु बंधेगी भैया? यहाँ पर तिरेंच आयु ही बंधेगी। तत्प्रायज्ञ विशुद्ध क्या लिखा? तत्प्रायज्ञ आयु में हमेशा तत्प्रायज्ञ शब्द लगाए। उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर बादर उक्त जीव आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध के स्वामी है। इसी प्रकार इनके बादर तो अदर पर्याप्त, बादर अपर्याप्त और सब सूक्ष्म जीवों के भी जानना चाहिए। उनकी अपनी अपनी मार्गणा में ये ऐसा ही कथन होगा। तो ये काय मार्गणा हो गई। अब यो
जो बादर जीव है तो जो सूक्ष्म जीव रहते हैं उसको भी उत्कृष्ट आयु तो बनने
हाँ तो
वहाँ पे अनुपात का उत्कृष्ट बंधन नहीं होगा।
एकदम सामान्य में लेंगे तो बादर को लेना है। अब सूक्ष्म की बात अलग से लेना है तो उसमें विशुद्धि वाला लेना है। तत्प्राय विशुद्धि वाला अन्य बादर में या अन्य अग्नि का एक वायु का एक बादर है ऊपर कहाँ? हाँ पृथ्वी का एक जल का एक में जो सभी मनुष्य आयु तीन चाहे दोनों ही बांध सकते। अब औदारिक मिश्र का योगी जीव में चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग का स्वामी कौन है? संगी मिथ्या दृष्टि तीरियंच या मनुष्य? नितिन भाई देवनार्के को क्यों छोड़ा? यहाँ औदारिक मिश्र की बात चल रही है। औदारिक मिश्र में गुणस्थान कौन कौन से प्रेरणा बिन? औदारिक मिश्र का युग में गुणस्थान कौन कौन से? एक दो और चार। यहाँ केवली की बात ही नहीं लेनी है, यहाँ तब बंध की बात है, अनुभाग बंध की। तो एक दो और चार में धाती कर्मों का उत्कृष्ट बंध कौन करेंगे? तो मिथ्या दृष्टि करेंगे। तो संगी मिथ्या दृष्टि क्योंकि एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय तक सबके होगा औदारिक मिश्र। संगी मिथ्या दृष्टि तिर्यंश या मनुष्य साकार जागृत और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित संकलेश वाला क्यों नहीं लिया? अन्यत्र पंचेंद्रिय उक्त जीव चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। वहां उत्कृष्ट संकलेश युक्त लिखना चाहिए था ना ऊपर? क्या नियम उत्कृष्ट अनुभाग वट्टन नियम के बाद एक्चुअली नियम उत्कृष्ट संकलित उत्कृष्ट वट्टक यानी ये शब्द ऐड करना चाहिए था। नियमा उपकस उपक संकलित अनुभाग बंध में अवस्थित हो बराबर है परंतु नियमा शब्द उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित वाले को नहीं लगाते, उत्कृष्ट संकलेश वाले को नियमा शब्द लगाएंगे। यहाँ तो नियम से लिखा ही नहीं है ना हिंदी में। देखो हम ऐसा लिखेंगे संगी मिथ्या दृष्टि तीरियंच मनुष्य साकार जागृत और नियम से उत्कृष्ट संकलेश में नहीं उत्कृष्ट संकलेश युक्त नियम से उत्कृष्ट संकलेश युक्त युक्त उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर पंचेंद्रिय उक्त जीव यानी औदारिक मिश्र वाला चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। वेदनीय नाम और गोत्र के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? अब ये शुभ प्रकृतियां लेनी है यहाँ पर, तो औदारिक मिश्र अवस्था में चौथा गुण स्थान भी तो है, तो सम्यक दृष्टि, वो भी सर्व विशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित। अन्यतर तिर्यंच और मनुष्य शायी होने जा रहा है या कृतकृत्य में विराजमान है, उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? अभी औदारिक मिश्र में आयु बांधने वाले कौन होंगे, कौन से गुणस्थान वाले होंगे? पहला दूसरा होगा, परंतु पहला ही लेना है। संगी मिथ्या दृष्टि, तिर्यंच या मनुष्य, साकार जागृत तत्प्राय विशुद्धि युक्त और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित। अन्यतर पंचेन्द्रिय उक्त जीव आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है, क्योंकि यहाँ आयु कौन सी बंधेगी, मनुष्य की या तिर्यंच की? दोनों ही प्रशस्त आयु है, इसलिए तत्प्राय विशुद्धि लिया। यही रुकेंगे हम। जानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक सदा देता।